नमस्ते, आज हम क्लाइमेट चेंज पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे ना। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं और हम देखेंगे कि उनसे क्या खास बातें निकलती हैं।
नमस्ते, बिल्कुल कोशिश यही रहेगी।
तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर असर और भारत पर भी खास ध्यान दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करें, आंकड़ों से?
हाँ, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, 2023 में दुनिया का औसत तापमान, मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था।
1.3 डिग्री, और ये बढ़ता ही जा रहा है।
हाँ, हर दशक करीब 0.2 डिग्री की रफ्तार से, और CO2 का लेवल 2024 में 422.7 ppm पहुंच गया।
ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन।
हाँ, यानी हवा के 10 लाख कणों में CO2 के लगभग 423 कण। ये पिछले साल से तो ज्यादा है ही, औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले करीब 50% ज्यादा है।
50%? बाप रे।
और कुछ दस्तावेज तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि ये बढ़ोतरी शायद पहले के अनुमानों से भी ज्यादा तेज हो सकती है।
और सीधा कनेक्शन वायु प्रदूषण से भी जुड़ता है ना?
ये
साइकिल कैसे काम करता है?
हाँ, ये एक तरह का कह सकते हैं दुष्चक्र है। जैसे तापमान बढ़ता है, खासकर गर्मी और सूखे के टाइम में, तो जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।
अच्छा।
और उन आगों से निकलने वाला धुआं, वो कण, वो हवा को बहुत खराब करते हैं।
दस्तावेज बताते हैं कि इसी वायु प्रदूषण से दुनिया भर में हर साल 45 लाख से ज्यादा लोग वक्त से पहले मर जाते हैं।
45 लाख हर साल, ये तो बहुत बड़ा नंबर है।
हाँ, और इसमें एक और चीज है, ओजोन, जमीनी स्तर वाली ओजोन।
ओजोन वो तो ऊपर होती है ना, हमारी रक्षा के लिए।
हाँ, वो स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन अलग है, ये जमीनी स्तर की ओजोन है जो प्रदूषित हवा में बनती है, खासकर जब मौसम गर्म और धूप वाला हो, और ये सेहत के लिए खतरनाक है।
अच्छा, तो मतलब बढ़ती गर्मी से ये खराब वाली ओजोन भी बढ़ती है, इसका कितना असर हो सकता है? दस्तावेज में एक अनुमान दिया गया है जो काफी सोचने वाला है। 2050 तक बदलते मौसम की वजह से शायद 50 लाख से 1.3 करोड़, मतलब इतने अतिरिक्त लोग खराब ओजोन के संपर्क में आ सकते हैं।
50 लाख से 1.3 करोड़ और लोग,
ये तो सीधे सीधे सेहत का सवाल है।
बिल्कुल,
ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल लेवल के बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सेहत पर असर डाल रहे हैं।
ये तो हो गई बड़ी तस्वीर, लेकिन असल दुनिया में जमीन पर क्या हो रहा है? दस्तावेजों में हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य अमेरिका का जिक्र है।
हाँ, और वहाँ की स्थिति काफी गंभीर है। जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 2020 से 23 के बीच भयानक सूखा पड़ा और फिर बाढ़ भी आई।
सूखा और बाढ़ दोनों?
हाँ बिल्कुल, नतीजा ये हुआ कि करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं।
3 करोड़?
और मध्य अमेरिका में, वहाँ पिछले कुछ दशकों से सूखा लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि इससे खेती की पैदावार 22% तक कम हो सकती है।
22%? ये तो बहुत बड़ा असर है खेती पर।
हाँ, ये दिखाता है कि असर कितना विनाशकारी हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जो पहले से ही संवेदनशील हैं।
और जब हम अलग अलग देशों को देखते हैं, जैसे दस्तावेजों में बेनिन और फ्रांस की तुलना की गई है, तो और क्या पता चलता है?
हाँ, ये तुलना काफी दिलचस्प है। बेनिन, जो पश्चिम अफ्रीका में है, वो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा प्रभावित है। उसकी तटरेखा कट रही है, सूखा पड़ रहा है, और वहाँ की लगभग 70% आबादी खेती पर निर्भर है।
तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही खतरे में।
बिल्कुल, दस्तावेज बताते हैं कि अकेले तटीय कटाव से ही उन्हें करीब 71.9 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है।
और फ्रांस, वो तो एक अमीर देश है।
हाँ, फ्रांस एक अमीर देश है, लेकिन वो भी बच नहीं पाया है। 2008 से 2023 के बीच वहाँ 141 मौसम संबंधी आपदाएं आई।
141?
हाँ, और इनसे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मतलब अमीर होने के बावजूद वो भी भारी कीमत चुका रहे हैं।
तो ये बड़ा जरूरी पॉइंट है, मतलब पैसा होना ही काफी नहीं है, तैयारी और बाकी चीजों का भी रोल है।
हाँ, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। दस्तावेज दिखाते हैं कि देश की भौगोलिक स्थिति, उसकी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, जैसे बेनिन की खेती पर निर्भरता, और उसने बचाव के लिए कितने और कैसे कदम उठाए हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि असर कितना होगा। फ्रांस बेशक ज्यादा संसाधन लगा सकता है, लेकिन फिर भी नुकसान तो उठा ही रहा है।
अब जरा भारत की तरफ आते हैं, यहाँ की क्या स्थिति है? चिंताएं तो हैं ही, गर्मी बढ़ रही है, मानसून का पैटर्न बदल रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है।
हाँ, भारत के लिए ये सब बड़ी चुनौतियां हैं।
लेकिन एक बात जो मुझे दस्तावेजों में पढ़कर थोड़ी अजीब लगी, वो है लोगों की जानकारी का स्तर। एक सर्वे कहता है कि 82% भारतीय मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
हाँ, ये तो अच्छी बात है कि ज्यादातर लोग मानते हैं।
हाँ, लेकिन सिर्फ 41% को ही थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, और 10% से भी कम लोग मानते हैं कि उन्हें पूरी जानकारी है।
अच्छा, ये जानकारी का अंतर तो काफी बड़ा है।
हाँ हाँ, राज्यों में भी फर्क है। जैसे गुजरात में 52% लोगों को कुछ जानकारी है, वहीं महाराष्ट्र में सिर्फ 33%।
ये वाकई में सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी तो वो बचाव के उपायों में पूरी तरह साथ कैसे देंगे।
सही बात है। और भारत बचाव के लिए कर क्या रहा है? दस्तावेजों में इंक्रीमेंटल और ट्रांसफॉर्मेटिव उपायों की बात है।
हाँ बिल्कुल, इंक्रीमेंटल मतलब जो मौजूदा सिस्टम है उसी में छोटे मोटे सुधार करना, जैसे फसलें बदलना, पानी का बेहतर इस्तेमाल करना।
और ट्रांसफॉर्मेटिव?
ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब बड़े बुनियादी बदलाव, जैसे खेती के अलावा रोजगार के नए तरीके ढूंढना, या शहरों की प्लानिंग ही इस तरह से करना कि वो बदलते मौसम को झेल सकें।
तो भारत ये दोनों तरह के कदम उठा रहा है।
कोशिश तो हो रही है, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे सही और पूरे आंकड़ों की कमी है, अलग अलग इलाकों की जरूरतें बहुत अलग हैं, और खेती के अलावा दूसरे सेक्टरों में बचाव के उपायों के लिए संसाधन मतलब पैसा और टेक्नोलॉजी सीमित हैं।
और ये सब तब हो रहा है जब भारत ने बड़े लक्ष्य भी रखे हैं, जैसे 2070 तक नेट जीरो।
हाँ, लक्ष्य बड़े हैं, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन, रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत तेजी से बढ़ाना। तो एक तरफ ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और दूसरी तरफ बचाव की जमीनी चुनौतियां और जानकारी का अंतर।
तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो तस्वीर ये है कि तापमान और CO2 खतरनाक तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका सीधा असर हमारी हवा और सेहत पर है।
हाँ,
दुनिया के कई हिस्सों में हालात बहुत गंभीर हैं।
बिल्कुल।
और हर देश, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अपनी तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। बेनिन, फ्रांस, भारत, सबके अपने अपने मुद्दे हैं।
सही। और भारत में जहाँ बड़े लक्ष्य हैं, वहीं जमीनी हकीकत, जानकारी का फासला, ये सब भी है।
तो आगे का रास्ता क्या है? मतलब इन दस्तावेजों से क्या सबक मिलता है?
असर विनाशकारी हो सकता है, हर देश का अनुभव अलग है, और भारत जैसी जगहों पर जानकारी और जरूरत के बीच का अंतर भरना होगा। दस्तावेज साफ तौर पर कहते हैं हमें बेहतर और ज्यादा डेटा चाहिए।
हाँ, डेटा तो जरूरी है।
और बचाव के लिए मजबूत, असरदार और सबके लिए बराबर योजनाएं बनानी होंगी, लोगों को ज्यादा जागरूक करना होगा, और सबसे जरूरी, दुनिया के देशों को मिलकर काम करना होगा।
सही कहा, मिलकर काम करना होगा। अच्छा, इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है श्रोताओं के सोचने के लिए।
हाँ पूछिए।
हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और सेहत, ये सब कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो अगर हम अपनी क्लाइमेट एक्शन की नीतियां बनाते समय लोगों की सेहत को सबसे आगे रखें, उसे प्राथमिकता दें, तो क्या हमारी रणनीतियां बिल्कुल अलग तरह की नहीं बनेंगी? इस पर सोचने की जरूरत है।